इमे जनपद,
इमे अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद, ये सारे नगर तथा ग्राम सब प्रकार से समृद्ध हो रहे हैं क्योंकि जड़ी बूटियों तथा अन्नों की प्रचुरता है। वृक्ष फलों से लदे हैं, नदियां बह रही हैं, पर्वत खनिजों से तथा समुद्र संपत्ति से पूर्ण हैं। यह सब आपकी कृपा दृष्टि से ही है। तात्पर्य, मानव संपन्नता प्राकृतिक वरदान से बढ़ती है, न कि विशाल औद्योगिक उद्यमों से। ये विशाल औद्योगिक उद्योग ईश्वर विहीन सभ्यता के प्रतिफल हैं और वे मानव जीवन के उद्देश्यों का विनाश करने वाले हैं। मनुष्य की प्राण शक्ति को निचोड़ने वाले इन कष्टप्रद उद्योगों को जितना ही अधिक बढ़ाया जाएगा, लोगों में उतना ही असंतोष फैलेगा। भले ही कुछ लोग इस शोषण द्वारा ठाट बाट से रह लें, अन्न वनस्पतियां फल नदियां रत्नों तथा खनिजों से पूर्ण पर्वत तथा मुक्ताओं से पूरित समुद्र, ये सब प्राकृतिक वरदान हैं, जिनकी पूर्ति परमेश्वर के आदेश से होती है और उनकी इच्छानुसार प्रकृति उन्हें प्रचुर मात्रा में उत्पन्न करती है या उनका अभाव ला देती है। यह प्राकृतिक नियम है कि मनुष्य इन दैवी वरदानों का लाभ उठाए तथा प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के उद्देश्य से शोषण की प्रवृत्ति छोड़कर संतोष धारण करके समृद्ध बने। अपनी भोग की लालसा से हम प्रकृति का जितना ही शोषण करने का प्रयास करेंगे, ऐसी शोषणकारी प्रवृत्तियों की प्रतिक्रिया द्वारा उतना ही फंसते जाएंगे। यदि हमारे पास प्रचुर अन्न फल वनस्पति तथा औषधियां हों, तो फिर कसाई घर चलाने एवं दीन पशुओं का वध करने से हमें क्या मिलेगा? मनुष्य को पशुवध करने की आवश्यकता नहीं है। यदि उसके पास खाने के लिए प्रचुर अन्न तथा शाक है, नदियों का बहता जल खेतों को उर्वर बनाता है और हमारी आवश्यकता से अधिक जल उपलब्ध है। पर्वतों से खनिज तथा समुद्रों से रत्न प्राप्त होते हैं। यदि मानव सभ्यता के पास प्रचुर अन्न खनिज रत्न जल दुग्ध आदि हो, तो फिर उसे क्या आवश्यकता है कि वह बेचारे मनुष्यों के श्रम पर भयंकर औद्योगिक जोखिमों के पीछे भागती फिरे। लेकिन ये सारे प्राकृतिक वरदान भगवत कृपा पर निर्भर हैं। अतएव आवश्यकता इस बात की है कि भगवान के नियमों के प्रति आज्ञाकारी बनकर भक्ति द्वारा मनुष्य जीवन की पूर्णता प्राप्त की जाए। कुंती देवी के द्वारा किए गए संकेत बिल्कुल सटीक हैं। वे चाहती हैं कि उन पर भगवान की कृपा दृष्टि बनी रहे, जिससे प्राकृतिक संपन्नता स्थापित रहे। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये श्लोक श्रीमद् भागवत के उन कई श्लोकों में से एक है जो हमारे गोकुल धाम प्रोजेक्ट का मूल कारण है। इन श्लोकों जैसे ही भक्तों को प्रेरणा मिली है, ऐसा एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि प्रकृति के वरदान और भगवान कृष्ण की कृपा, इन दो चीजों मात्र की आवश्यकता है मनुष्य समाज में शांति और समृद्धि प्राप्त करने के लिए, और किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। अन्य जो भी जितने भी सारे वस्तुएं हैं वो कृत्रिम हैं, और जो कृत्रिम वस्तु है, जो कृत्रिम जीवन प्रणाली है, वो केवल कष्टप्रद है, बस और कुछ नहीं। जैसे प्रभुपाद जी यहां तात्पर्य में कहते हैं, मनुष्य समाज की मूल्यवान शक्ति को निचोड़ लेती है, मनुष्य को भगवत प्राप्ति के लिए न शक्ति छोड़ती है, न समय, न इच्छा। आदमी इतना उलझ जाता है ऐसे जीवन प्रणाली में कि उसे यह पता भी नहीं रहता कि वो किस लिए जी रहा है। भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्राप्त करके जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान के धाम में जाना, ये हमारा उद्देश्य है, उसको बिल्कुल ज्ञात नहीं होता। और अगर कोई उसे इस बात को बताए भी तो उसे समय नहीं होता सुनने के लिए, या तो रुचि नहीं होती है। अगर रुचि होती भी है तो बेचारा इतना दब गया होता है अपने जीवन के संघर्ष से इस आधुनिक कृत्रिम सभ्यता में कि वो निस्सहाय होकर कहता है कि हम आना तो चाहते हैं, भक्ति करना तो चाहते हैं, लेकिन नहीं हो पा रहा है। क्योंकि आधुनिक सभ्यता रजगुण और तमोगुण से युक्त है। रजगुण में कभी चीजें समझ में आती हैं, कभी नहीं आती, कभी सुख होता है, कभी दुख होता है। सुख के पीछे भागते भागते व्यक्ति को बहुत दुख होता है, ये रजगुण का लक्षण है। ये सुख कैसा है? रजगुण का सुख इंद्रिय भोग, व्यक्ति इस स्तर के भोग को ही सुख मानता है, मूल्यवान मानता है, प्राप्त करने योग्य मानता है, और इसके पीछे भागता है, बहुत श्रम करता है, लेकिन अंततः इसका फल दुख ही होता है, जो पहले अमृत के समान है और अंत में विष के बराबर है। ये भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, पहचान कराते हैं रजगुणी सुख से। और तमगुण में तो न तो ज्ञान है, न तो सुख है, न भोग है, कुछ नहीं है, केवल वहां अज्ञान है और दुख है। लेकिन सत्वगुण में स्थित होने पर व्यक्ति की बुद्धि विकसित हो सकती है, वो समझ सकता है कि जीवन के लिए आवश्यक वस्तुएं, आवश्यक सिद्धांत कौन से हैं, मनुष्य समाज कैसे होना चाहिए, मेरा जीवन कैसे होना चाहिए। वो व्यक्ति ठंडे दिमाग से ये सब सोच सकता है। जब व्यक्ति संसार के पीछे भागते भागते उसका दिमाग गर्म हो जाता है तो भला क्या सोचेगा भगवान के बारे में। अगर भगवान के बारे में सोचेगा भी तो केवल दुनिया की चीजों के लिए ही भागेगा कि मुझे और ये दीजिए और वो दीजिए, बुखार बढ़ाइए, और बुखार कम करने के लिए कभी नहीं जाएगा भगवान के पास कि भगवान मेरे अंदर बहुत भौतिक इच्छाएं हैं, उनको कम कीजिए। ऐसा नहीं जाएगा व्यक्ति, मेरी ये सारे फलाने फलाने इच्छाएं हैं, उनको पूर्ण कीजिए, इन इच्छाओं से जाएगा भगवान के पास। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये अभाव जो है, जो ये एक गलत प्रचार है आधुनिक सभ्यता में कि जनसंख्या बढ़ती जा रही है और अनाज का अभाव हो जाएगा, सब्जी का अभाव हो जाएगा, वनस्पतियों का, जड़ी बूटियों का अभाव है। प्रभुपाद कहते हैं किसी भी चीज का अभाव नहीं है सिवाय कृष्ण भक्ति का। कृष्ण भक्ति जहां हो तो श्री कृष्ण जो कि परम सत्य हैं, प्रचुर मात्रा में, मनुष्य समाज तो क्या, सारे पशु प्राणियों को पक्षियों को वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करा देंगे। जैसे यहां तात्पर्य में लिखा गया है कि प्राणी जो पशु होते हैं वो भी इधर उधर घूमते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि संघर्ष तो सभी को करना पड़ता है लेकिन अंत में भगवान उनको भोजन दे ही देते हैं। एक छोटा सा कीड़ा है या हाथी है दोनों को मिलता है। शेर जंगल का राजा है लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि वो राजा है तो आराम से बैठेगा उसके मुंह में भोजन आ जाएगा। उसको संघर्ष करना पड़ता है और कभी कभी कम से कम उसको एक हफ्ता घूमना पड़ता है। हालांकि वो इतना शक्तिशाली है लेकिन प्रकृति के नियम से ऐसे भी पशु पक्षी उसके पीछे भागते हैं जो जैसे ही वो देख लेते हैं कि ये अभी निकला है निकल पड़ा है अपने भोजन के लिए तो फयो 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 करके ऐसे आवाज करते हैं पक्षी। प्रभुपाद कहते हैं सारे अन्य प्राणियों को जंगल में चेतावनी दे देते हैं शेर निकल पड़ा है सावधान सावधान। तो सब लोग अपने अपने जगह भाग जाते हैं तो बेचारा शेर उसको कुछ नहीं मिलता। आखिर किसी न किसी तरह से बहुत कष्ट से एक सप्ताह बाद में उसको कुछ मिल जाता है और फिर उसको वो छुपा के रखता है क्योंकि ताजा भोजन तो उसको मिलना नहीं है बार बार। लेकिन जो भी है उसे मिल तो जाता है। हर एक व्यक्ति को हर एक पशु को चाहे वो जंगल में रहने वाला शाकाहारी हो या मांसाहारी हो लेकिन हर एक को मिल जाता है तो मनुष्यों को क्यों नहीं मिलेगा। अगर ये अभाव महसूस हो रहा है तो ये एक कृत्रिम अभाव की परिस्थिति है जो मनुष्य ने निर्माण मनुष्य की निर्मिति है। क्योंकि मनुष्य भगवान के शरण में नहीं जाना चाहता है इसलिए ये परिस्थिति हो गई है। नदियों में पहाड़ों से आते हुए जो है तरह तरह के धातु वगैरह होते हैं और ये नदी का जल जब खेती में उपयोग किया जाता है तो उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है और खेत को सारे हर प्रकार का समस्त प्रकारों की जो पोषण चाहिए वो सब मिल जाते हैं। पहाड़ों में और भी धन है जैसे रत्न वगैरह प्राप्त होते हैं साथ साथ में समुद्रों में मोतियां वो प्राप्त होती हैं। अगर वृक्ष है तो वृक्षों से फल और फूल प्रचुर मात्रा में उत्पन्न होते हैं खेत से प्रचुर मात्रा में अनाज उत्पन्न होता है तो किस चीज की कमी है मनुष्य समाज के लिए। तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं केवल दो चीजें प्रकृति के वरदान और भगवान कृष्ण की कृपा। प्रकृति के वरदान ये भगवान के भेंट है। प्रकृति मतलब किसकी प्रकृति भगवान की प्रकृति। तो कुंती महारानी यहां पर कह रही हैं इमे जनपदा स्वृद्धा सुपकौषधि वीरुथः। स्वृद्धा स्वृद्धा मतलब समृद्धि ऐश्वर्य। ये सारे जो शहर हैं गांव हैं ये सब खिल गए हैं खेतों में अनाज है हरियाली है सब जगह हरे भरे खेत हैं नदियां सूख नहीं गई हैं भरपूर पानी बह रहा है नदियों में कृषि के लिए कोई समस्या नहीं है सब जगह प्राकृतिक सौंदर्य ऐश्वर्य है हर चीज प्राप्त है और इसका कारण क्या है और केवल है नहीं बढ़ते जा रहा ही एधन्ते मतलब इसकी वृद्धि हो रही है और इसका कारण क्या है तव वीक्षित ही केवल आपकी दृष्टि है आपकी दृष्टि इस जगह पड़ी हुई है इसलिए सब कुछ यहाँ हरा भरा लग रहा है। पिछले श्लोक में भी कुंती महारानी कह चुकी हैं स्वलक्षण विलक्षित ही आपके चरण चिन्हों से अंकित ये भूमि बहुत शोभायमान हो रही है बहुत सुंदर लग रही है। अब जबकि आप चले जा रहे हैं यहाँ से तो अब ये सुंदर नहीं लगेंगे ये प्रांत जब आप यहाँ हैं तो सुंदर है सब कुछ। उसी प्रकार से यहाँ पे कुंती महारानी कह रही है केवल आपके दृष्टि मात्र से सब कुछ खिल उठता है। प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान की दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद कहते हैं सब भक्तों को मंदिर में आना चाहिए भगवान का दर्शन तो करना चाहिए, ये एक कारण है कि हम भगवान का दर्शन करने आते हैं, कथा सुनने आते हैं, भक्तों का संग करने आते हैं इत्यादि। परंतु इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण कारण है भगवान का दर्शन करने में, और वो क्या है कि भगवान की कृपा दृष्टि हमारे ऊपर आने के लिए ये एक सुविधाजनक अवस्था है। हम जब ठाकुर जी के सामने बैठते हैं, श्री श्री राधा गोकुलानंद गौर निताय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा वो भी हमारे ऊपर दृष्टिपात करते हैं, वो भी देखते हैं हमको, हाँ ये देखो हमारा भक्त हमारे दर्शन करने के लिए आया है। तो भगवान की दृष्टि जब हमारे ऊपर पड़ेगी तो क्या होगा, जिस प्रकार से सारी प्रकृति हरी भरी हो गई है, खिल गई है, जब भगवान की दृष्टि हमारे ऊपर होगी तो हमारे जीवन में क्या होगा, सब कुछ खिल जाएगा, हम सुखी हो जाएंगे। तो ये है हमारा दर्शन, फिलॉसफी, लॉजिक, यही न्याय है इसके पीछे कि हमें आना है मंदिर में भगवान की कृपा दृष्टि को प्राप्त करना है। भगवान अपनी कृपा अपनी दृष्टि से ही सब कुछ संपन्न कर सकते हैं, सारे सृष्टि का सृजन भगवान ने केवल अपने दृष्टि मात्र से किया है। स ऐक्षत ऐसे वेदों में कहा गया है। महाविष्णु जब उनकी बहिरंगा शक्ति प्रकृति के ऊपर प्रधान के ऊपर अपनी दृष्टिपात करते हैं तो फिर वो उत्तेजित हो जाता है और उत्तेजित होकर फिर सृष्टि का सृजन हो जाता है केवल दृष्टि से। प्रभुपाद जी समझाते हैं कि भगवान को पुरुष कहते हैं और प्रकृति ये स्त्रीलिंग है जो माता के बराबर है और भगवान पिता के बराबर है। तो भगवान अपनी दृष्टि मात्र से प्रकृति के माध्यम से ये 84 लाख योनियों को उत्पन्न कराते हैं। जितने भी विविध प्रकार के प्राणियों को हम देखते हैं ये सारे भगवान श्री कृष्ण के संतान हैं, प्रकृति के द्वारा उत्पन्न किए गए। प्रभुपाद कहते हैं कोई भी पुरुष अपनी पत्नी के ऊपर केवल दृष्टि डाल के संतान की उत्पत्ति नहीं कर सकता है, परंतु भगवान पूर्ण समर्थ हैं, इसलिए अपने दृष्टि मात्र से ये 84 लाख योनियों को उत्पन्न कर दिए हैं। ये है भगवान। फिर भी ऐसे मूर्ख व्यक्ति हैं जो अपने आप को भगवान कहलाते हैं, जगह जगह जानते नहीं है कि भगवान मतलब क्या है। केवल अपनी कृपा से सब चीज और अपनी दृष्टि से सब चीज को हरा भरा करा सकते हैं, वो नहीं करा सकते। इसलिए भगवान की कृपा दृष्टि हमारे ऊपर रहेगी तो बस सब चीजें पर्याप्त मात्रा में हमें उपलब्ध होंगी, किसी भी चीज का अभाव नहीं होगा, सब कुछ ठीक ठाक चलेगा, अन्य कृत्रिम चीजों की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए हम देखते हैं कि जो भक्त वहां जाते हैं हमारे गोकुल धाम में, वहां कितने हर दृष्टि से खिल उठते हैं। हालांकि प्रचार के कार्य को बढ़ाने के लिए सब जगह केंद्र होना आवश्यक है, नहीं तो प्रचार होगा कैसे, चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी पूर्ण कैसे होगी, पृथ्वीते आदि जत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होगे मोर नाम, वो भविष्यवाणी सार्थक होगी कैसे। प्रभुपाद जी ने ये विश्व आंदोलन बनाया ताकि हर गली में हर गांव में हर शहर में हर सब जगह ये हरिनाम फैले। तो शहरों में भी तो मंदिरों की आवश्यकता है और यहां भी भक्तों को रहने की आवश्यकता है, नहीं तो प्रचार कार्य नहीं बढ़ेगा। परंतु साथ साथ श्री प्रभुपाद चाहते थे कि जो उन्होंने पुस्तकों में लिखा है उसको प्रत्यक्ष रूप से उसको प्रैक्टिकली उसको उतारा जाए और ऐसे भी हमारे कार्यक्रम हो कार्यकलाप हो जिनसे इन सिद्धांतों को प्रकट कराया जाए प्रकाश कराया जाए। तो इसलिए ये प्रोजेक्ट है, वहां जो भक्त जाते हैं सतोगुणी वातावरण में रहते हैं, वहां पे शुद्ध पानी शुद्ध दूध शुद्ध वहां पे गोबर खत से बनाया हुआ जो अनाज है वो शुद्ध आहार लेते हैं और दिन भर परिश्रम करते हैं, एक समय गंवाने के लिए इधर उधर बातचीत फालतू की बातचीत करने के लिए नहीं है। सुबह जल्दी उठे जंगल में गए स्थान एक समय गंवाने के लिए इधर उधर बातचीत फालतू की बातचीत करने के लिए नहीं है। सुबह जल्दी उठे, जंगल में गए, स्नान वान कर लिया, आए, अपना माला जप कर लिया, मंगल आरती कर ली और फिर अपने काम में शुरू, और फिर आके नाश्ता प्रसाद लिया, फिर से काम शुरू, फिर दोपहर का भोजन लिया, प्रसाद लिया, फिर थोड़े क्लास सुन लिया, श्रवण प्रवचन सुन लिया और फिर और सेवा, तरह तरह की सेवाएं, और बाद में आके शाम को थोड़ा गर्म दूध वगैरह लेकर साथ में थोड़े प्रभुपाद की किताबें पढ़ते पढ़ते फिर सो जाना। क्या चाहिए और जीवन में कि ये फिजूल का संघर्ष। यहां पर शहरी जीवन में क्या है, शरीर के लिए सुविधाएं बहुत हैं लेकिन तनाव बहुत ज्यादा है। ये जीवन शैली ऐसी है, कृत्रिम अवस्था में तनाव पैदा करने वाला जीवन है ये। इसलिए सबको देखिए, सबके चेहरे देखिए बाहर, किसी को पूछे क्यों नहीं आए, बहुत टेंशन है, नहीं आया। तो ऐसे जीवन जिएंगे तो टेंशन नहीं आएगा तो क्या होगा और क्या आएगा। लेकिन वहां पर बड़े खुले मन से सभी लोग अच्छी तरह से सेवा करते हैं। गाय की सेवा करो, गाय का दूध पियो, अनाज की उत्पत्ति करो, परिश्रम करो, भगवान श्री कृष्ण के नाम का उच्चारण करो, कथा सुनो, प्रसाद खाओ, बस यही है। तो कुंती महारानी बतला रही हैं कि केवल अगर हम कृष्ण को प्रसन्न करेंगे तो बस सब कुछ हो जाएगा, ये रामबाण उपाय है। तो आइए अगले श्लोक में कुंती महारानी क्या कहती हैं वो हम सुन लें। अथ विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ते स्वकेशु मे स्नेह पाशम इमं छिन्धि दृढ़ं पांडुषु वृष्णिषु। अथ विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ते स्वकेशु मे स्नेहपाशम इमं छिन्धि दृढ़ं पांडुषु वृष्णिषु। अथ विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ते स्वकेशु मे स्नेहपाशम इमं छिन्धि दृढ़ं पांडुषु वृष्णिषु। अथ श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवाद। अतः हे ब्रह्मांड के स्वामी, ब्रह्मांड की आत्मा विश्वरूप, कृपा करके मेरे स्वजनों पांडवों तथा वृष्णियों के प्रति मेरे स्नेह बंधन को काट डालें। ऐसे कोई प्रार्थना करता है, वो कहती हैं, मैं तो मां हूं और मेरे पांच लड़के हैं, पांचों के पांच बड़े योग्य हैं। ऐसे संसार में कभी होता है, पुत्र बदमाश निकले, निकम्मा निकले, बहुत कष्ट दे अपने माता पिता को, तो कभी कभी माता पिता सोचते हैं कि चले जाइए हमसे दूर, दूर चले जाए, नहीं चाहिए ऐसा पुत्र, हमें नहीं चाहिए, त्याग देते हैं और सोचते हैं कि हमारा स्नेह इसके प्रति बिल्कुल टूट जाए। लेकिन पांडवों जैसे पुत्र जिसके पास हो, वो कभी ऐसा कह सकता है? आदर्श पुत्र हर दृष्टि से। फिर भी कुंती महारानी यहां पर कहती हैं कि हे कृष्ण, इनके प्रति जो मेरा स्नेह है, स्नेह पाश, इसको काट डालो। पाश मतलब क्या है? ये रस्सी है, जंजीर है। कुंती महारानी जानती हैं कि उनके परिवार के प्रति जो उनकी आसक्ति है वो एक पाश है, जंजीर है, रस्सी है जो उनको बांध के रख रही है। कहां बांध के रख रही है? किस तरह से बांध के रख रही है? संसार में। और इसलिए मैं पूरी तरह से आपके शरण में नहीं आ पा रही हूं, क्योंकि इस ओर मेरी चिंता मेरे पुत्रों के प्रति हमेशा लगती है कि कल क्या हो जाए। अभी मेरा बेटा विश्व सम्राट है, लेकिन फिर भी कितने शत्रु हैं, वो नुकसान करने के लिए बैठे हैं, कल कोई राजा आक्रमण करे, कर कुछ और हो जाए। तो हर दृष्टि से एक मां अपने बेटों के प्रति चिंता करती है। तो कुंती महारानी भी सोच रही हैं कि मैं तो कृष्ण की भक्त हूं, लेकिन फिर भी गृहस्थ आश्रम में होने के नाते, एक मां होने के नाते, स्वाभाविक रूप से मेरे मन में मेरे परिवार के प्रति आसक्ति है। जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, वो कभी भगवान को ऐसी कोई चीज मांगते नहीं हैं जो उनके स्वार्थ के लिए हो। वो केवल भगवान की सेवा के लिए ही वो उत्सुक रहते हैं, और भगवान को जो प्रसन्न करे वही भगवान से मांगते हैं, अपने आप के लिए कुछ नहीं मांगते। लेकिन कभी कभी जब भक्त गृहस्थ आश्रम में होते हैं, तो कभी कभी अपने परिवार के स्नेह की वजह से कभी कभी मांगना पड़ता है भक्त को। तो कुंती महारानी शोक कर रही है इस बात के ऊपर कि वैसे मुझे मांगना तो नहीं चाहिए, ये शुद्ध भक्ति का सिद्धांत नहीं है, लेकिन क्या करूं, मैं एक मां हूं, महिला हूं, गृहस्थी हूं, तो मुझे कुछ तो मांगना, कभी कभी मांगना पड़ता है, और मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि आपसे मैं कुछ मांगू इस तरह से। इसलिए वो सोच रही है, इसके लिए एक ही उपाय है। उपाय ये है कि जो आसक्ति है इसी को काट डालिए, तो मूल से, जड़ से जो है समस्या का समाधान हो जाएगा। केवल हमारे बच्चों के प्रति, हमारे परिवार के प्रति आसक्ति क्यों है? क्योंकि हम सोचते हैं कि ये मेरे हैं। तो कुंती महारानी कहते हैं, स्वकेशु, ये मेरे हैं, ये जो भावना है इसी को काट दीजिए। ये सब वास्तव में आपके हैं, मेरे कुछ कोई भी नहीं है। अन्य परिवारों के प्रति जो सदस्य होते हैं, उनके प्रति हम ऐसा नहीं सोचते हैं। इस दुनिया में परिवार की जो आसक्ति है वो बहुत दृढ़ है। इसलिए कुंती महारानी यहां इस शब्द का प्रयोग कर रही हैं, दृढ़ेशु, दृढ़। इसको काटना बहुत मुश्किल है। इसलिए कुंती महारानी प्रार्थना कर रही हैं भगवान श्री कृष्ण से, स्वकेशु में स्नेह पाशम इमम छिंधी। छिंधी मतलब उसको काट डालना। क्यों काटना चाहिए? क्योंकि ये जो परिवार की आसक्ति है बहुत कष्टप्रद है, कष्टदायक है। एक गृहस्थ भक्त, विदेशी गृहस्थ भक्त हमसे कई साल पहले कह रहे थे, अपने गृहस्थी में काफी परेशान थे। विदेशों में जानते हैं आपके बच्चे बड़े होते हैं तो कैसे हो जाते हैं, भारत में भी ऐसी हो रहा है। तो कह रहे थे कि भगवान ने बच्चों के लिए, बच्चों को केवल एक कारण के लिए बनाया है। तो हमने पूछा कि क्या कारण है, तो आपका साक्षात्कार क्या है इस बारे में? हमने सोचा कोई फिलॉसफी बोलेंगे कुछ ऐसे खास। तो कहने लगे भगवान ने बच्चों को इस जगत में इसलिए बनाया है ताकि माता पिता का अहंकार चूर हो जाए। वो अपने साक्षात्कार से हम बोल रहे हैं, बोल रहे। तो परिवार में आसक्ति होती है क्योंकि हम सोचते हैं ये मेरे हैं। और जब व्यक्ति सोचता है जनस्य मोहोयम अहम ममेति, अहम और मम, मैं और मेरा, जब ये भावना आ जाती है तो सारे कष्ट आ जाते हैं। बच्चे तो बहुत सारे होते हैं लेकिन वो हमारे नहीं हैं, इसलिए हमें कोई कष्ट नहीं होता। उनको कुछ भी, वो कुछ भी करे, वो बदमाश भी बन जाए तो हम एक मिनट के लिए हम चक 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 करेंगे फिर भूल जाएंगे। लेकिन अपना बच्चा बदमाशी करे तो अरे वाह क्या कितना कष्ट होता है, क्योंकि हम सोचते हैं मेरा बच्चा है, वो भी तो बच्चा है लेकिन वो मेरा नहीं है ना, इसलिए कष्ट नहीं होता। तो ये मूल बात है, वास्तव में बच्चा केवल भगवान का है, हमारा नहीं है। सारे सगे संबंध सब भगवान की संपत्ति है, इसलिए यहां परिवार की आसक्ति बहुत दृढ़ है, इसको काटना इतना मुश्किल होता है। इसलिए कुंती महारानी कहती हैं कि ये कट नहीं रहा है मुझसे, मेरे प्रयास से, मेरे बुद्धि से कट नहीं रहा है, इसलिए आप ही इसको काटिए। आप जब काटेंगे तो ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। और कुंती महारानी कहती हैं न केवल पांडुषु वृष्णिषु, कहती मेरी समस्या डबल है, न केवल पांडवों के प्रति, पांडवों के प्रति, अब ये वृष्णि है ये भी तो मेरे रिश्तेदार हैं। अब आप तो जानते हैं कि श्री कृष्ण हस्तिनापुर को छोड़कर जाने वाले थे द्वारका, कुंती महारानी ने उनको रोक लिया, उसके बाद युधिष्ठिर महाराज ने रोक दिया, उत्तरा ने रोक दिया, सब रोके जा रहे थे उनको आप मत जाइए। अब कुंती महारानी सोच रही हैं मेरा विवाह हुआ कुरुवंश में, पांडवों में, पांडु के साथ मेरा विवाह हुआ, तो मेरी आसक्ति स्वाभाविक रूप से यहां पर है, लेकिन मेरे मायके कहां है? वो तो वृष्णि वंश में है, और वहां के मेरे रिश्तेदार हैं वो श्री कृष्ण के उपस्थिति को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अगर मैं कृष्ण को यहां रोक लूं तो मेरे बच्चे पांडव इनको लाभ होगा, लेकिन मेरे रिश्तेदार वृष्णि जो हैं उनको लाभ नहीं होगा, वो कृष्ण के संग से वंचित रह जाएंगे। अगर मैं वृष्णियों के बारे में सोचूं और कृष्ण को बोलूं कि आप उनको संग दीजिए तो मेरे बच्चे पांडव वो कृष्ण के संग से वंचित हो जाएंगे। तो चाहिए ही नहीं मुझे ये दोनों के प्रति आसक्ति, दोनों तरीकों से, दोनों तरफ से मुझे तकलीफ हो रही है, इसलिए छिंधी काट दीजिए। दृढ़ेशु, जो दृढ़ है बिल्कुल, दृढ़म पांडुषु वृष्णुषु, दोनों के प्रति जो आसक्ति है वो काट दीजिए। इसको कहते हैं वैराग्य। सबसे महत्वपूर्ण आसक्ति है परिवार के प्रति आसक्ति, गृहस्थाश्रम। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं प्रवचन में कि जो व्यक्ति कृष्ण भक्ति करना चाहता है, अपने मनुष्य जीवन को सफल बनाना चाहता है, उसको अपना हृदय उदार करना चाहिए, हृदय को बड़ा करना चाहिए, न कि वो स्वार्थी बन जाए, जनस्य मोहो यम अहम ममेति, कि मैं और मेरा परिवार, बस मेरे परिवार के लिए मैं सब कुछ करूंगा लेकिन परिवार के बाहर किसी के लिए कुछ नहीं करूंगा, ऐसे नहीं। उदार चरित्र होना चाहिए, ये मनुष्य होता है। जब मनुष्य अपने चित्त को बहुत छोटा कर लेता है वो कंजूस हो जाता है, कंजूस आदमी न इस जीवन में सुख प्राप्त करता है न अगले जन्म में कहीं सुख प्राप्त करता है। उसकी गति भी ठीक नहीं होती, जो केवल अपने पास सब कुछ रखता है और उसको बांटता नहीं है सब में। बांटने वाला आदमी इस जीवन में खुश होता है और आने वाले जीवन में खुश होता है। बांटने वाला व्यक्ति बुद्धिमान होता है, क्योंकि वो जानता है कि वैसे भी आज नहीं तो कल मुझे देना ही पड़ेगा, इससे अलग होना ही होगा। तो स्वेच्छा से सब जगह बांट लें तो उसका श्रेय भी तो मिलेगा, और नहीं बांटेंगे तो वैसे भी छीन लिया जाएगा और श्रेय तो क्या दंड मिलेगा नहीं बांटने की वजह से। इसलिए कहा गया है अयम निजह परह वेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम। ये वसुधैव कुटुंबकम आपने कई बार सुना होगा, हमारे पॉलिटिशियंस भी इसके बारे में बात करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम। वसुधा मतलब पृथ्वी। पहले ही हम सुन चुके हैं कि पृथ्वी में कितना धन है। पृथ्वी हमें मोतियां देती हैं, रत्न देती हैं, धातु देती हैं, तरह तरह के चीजें, इसको वसु कहते हैं। और वसु को धारण करने वाली हैं वसुधा या वसुंधरा या धरणी धरा, ये सब पृथ्वी के नाम है। तो वसुधा एव कुटुंबकम, तो ये सारी पृथ्वी जो है, ये सारा जगत, ये एक कुटुंब है, श्री कृष्ण का कुटुंब है, सब मेरे भाई बहन हैं। तो ऐसा जो सोचता है उसका चरित्र कैसा, उदार चरितानाम, ऐसा उदार हमको होना चाहिए, हमारे शास्त्र सिखलाते हैं। न कि अयम निजह, ये मेरा है, अयम ये मेरा, निजह परह वेत्ति वो उसका है। तो ये जो भावना है कि मेरा और उसका, और मेरा जो भाग है उसको बढ़ाना चाहिए, मेरा और होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा मेरे पास होना चाहिए, जब ये वृत्ति रहती है तो सब खत्म हो जाता है। ये लोभ जो होता है ये एक ऐसे अग्नि के बराबर है जिसमें हम घी या तेल डालते जाते हैं, कभी बंद नहीं होता, एक ही उपाय है उसको काटना है आध्यात्मिक ज्ञान से। जब हम जान जाते हैं कि जितना हम ज्यादा केवल अपने आप के लिए सब कुछ रखते हैं उतना ही कष्ट हमें होगा, तब हम हाथ हमारे ढीले हो जाएंगे। हाँ, ये सबके लिए, केवल मेरे लिए नहीं है। यहां तक कि जो चींटियां हैं, जो कॉकरोच हैं, उनका भी कोई अधिकार बनता है। जो कुत्ते हैं सड़क पे घूमने वाले, उनका भी थोड़ा अधिकार होता है। जो पक्षी हैं उनका भी अधिकार है हमारे अनाज के ऊपर। हाँ, जब पक्षी या जो पशु हैं सब कुछ तहस नहस कर देते हैं तब तो कुछ मनुष्य के लिए रह नहीं जाता, तो खेत की रक्षा करनी चाहिए, परंतु थोड़ा बहुत पक्षियों के लिए रख देना ये अच्छा है। अगर उनका हिस्सा उनको मिल जाए तो हमारे पास आकर हमारे चीज को नाश नहीं करेंगे वो। इसलिए हमें बांट के सब चीजों का भोग करना चाहिए नियम के भीतर में, नहीं तो न उनको मिलेगा न हमें मिलेगा, और फिर ये छीना तानी तान ये सब चलता रहेगा जीवन में। इसलिए उदार हृदय का बनना चाहिए। प्रभुपाद समझाते हैं कि परिवार की जिम्मेदारी लेना मतलब क्या है, कि हमारे ऊपर जो निर्भर हैं उनको जीवन मृत्यु के चक्कर से छुटकारा दिला देना, ये जिम्मेदारी है। नहीं तो परिवार तो सबके हैं, पशुओं के भी परिवार हैं, पक्षियों के भी परिवार हैं। हम वृंदावन में देखते हैं इतने सारे बंदर हैं, बस पूछो नहीं आप। हमारे चश्मा तो कितने सारे, वो चप्पल चश्मा सब, भोजन क्या नहीं ले जाते। उनका जीवन का संघर्ष बहुत कड़ा हो गया है, अभी उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। वो भी अपने परिवार का पालन ऐसे करते हैं जबरदस्त। हमारे कमरे में हम दरवाजा खोला, हमको समझ में नहीं आया कि दरवाजा खुला है, दरवाजा को हम कोई काम में व्यस्त थे, अंदर एक बंदर आ गया और बंद क्या आवाज है, देखा तो बंदर अंदर तहस नहस कर रहा है और बाहर ये सारे बंदर, वो बच्चा था, बंदर का बच्चा था, और बाहर उसका सारा परिवार जो है, वो सारा समाज बंदरों का हमारे दरवाजे के सामने इकट्ठा हो गया और ऐसे भयंकर भयंकर आवाज करके सब अपने दांत नाखून सब लेके तैयार खड़े बाहर। अब उनको अंदर आने से रोकने के लिए दरवाजा बंद करना पड़ा, और जब दरवाजा बंद किया तो ये अंदर से शोर मचाने लगा, ये बच्चा है ये चीखने लगा, उसकी चीख सुनकर ये लोग और ज्यादा गुस्सा हो गए, सारे भक्त लोग आए लाठी वगैरह लेकर, लेकिन कोई सामने नहीं आ पाया, इतना गुस्सा इनका, क्योंकि अपने परिवार के अपने स्वजन की रक्षा करने के लिए ये लोग लाठी खाने के लिए भी तैयार थे, किसी भी से डरते नहीं थे। और फिर आखिर किसी न किसी तरह से वो दरवाजा खोल दिया, वो खोलने के बाद भी उसको पता नहीं चला कहां आखिर वो निकल गया, फिर सारे लोग चले गए बंदर। तो ये भी परिवार की रक्षा ये लोग भी तो करते हैं, बंदर भी कर रहे हैं, लेकिन उनको गीता का उपदेश देने जाओ नहीं सुनेंगे। तो अगर केवल परिवार की रक्षा, परिवार का भरण पोषण, यही अगर हमारे जीवन में सब कुछ है, हमारे छोटे से परिवार के लिए हम सब कुछ करेंगे, इसी में हमारा सारा जीवन कट जाए, तो व्यर्थ गया हमारा जीवन, पशुओं की तरह हमारा जीवन बीत गया। हर जीवन में हर योनि में हमारे पास परिवार हुए हैं, तो परिवार होना यह कोई बड़ी बात नहीं है, और परिवार का भरण पोषण करना यह भी कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो करना ही है, जब पशु पक्षी करते हैं तो मनुष्य को क्यों नहीं करना चाहिए। परंतु जब व्यक्ति सोचता है कि यही हमारा सर्वस्व है, बस अगर परिवार का भरण पोषण किया तो हम एक यशस्वी व्यक्ति माने जाते हैं, हमारा जीवन सफल हमने किया है, क्योंकि हमारे समाज की जिम्मेदारियों को हमने अच्छी तरह से निभाया है, बच्चों को खिलाया पिलाया, उनको पढ़ा दिया, उनको नौकरी में लगा दिया, शादी करा दी, बस हमारा जीवन सफल, और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, जब तक हमारे परिवार के सदस्यों को हम भगवान कृष्ण के भक्त नहीं बनाते, उनको इस योग्य नहीं बनाते कि वो इस जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटने के लिए योग्य हो जाएं, तब तक हमारा कर्तव्य अधूरा रह जाएगा, अपूर्ण। गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्, दैवम न तत्स्यान् पति न सस्यात्, जननी न सस्यान् पिता न सस्यान्, न मोचयेत यह समुपेत मृत्युम। श्रीमद् भागवत में ऋषभदेव महाराज अपने 100 पुत्रों को उपदेश देते, वादी वहां थी, इसलिए हम सब ने वहां कीर्तन किया। आपने देखा होगा कि वहां बगीचा, इस जबेश्वर तोटा में श्री लगोदाधर पंडित गोस्वामी नित्य राजा हैं, समस्त प्रकार के ऐश्वर्य भोग के साधन उपलब्ध हैं उनके लिए, लेकिन अपने बच्चों को क्या कह रहे हैं, भोग नहीं करना। नूनम प्रमत्तः कुरुते विकर्म यद इंद्रिय प्रीतय आप्रणोति, कि तुम भी पशुओं की तरह भोग नहीं करना। ये भोग के साधन तो पशुओं के लिए उपलब्ध है, जो कीचड़ में रहने वाले पशु उनके लिए भी उपलब्ध है, लेकिन तुम मनुष्य जीवन में हो इसलिए ऐसे कार्य नहीं करना। और फिर वो कहते हैं गुरु न सस्या, कोई व्यक्ति गुरु बनने के लिए योग्य नहीं है। स्वजनों न सस्यात, अपने आप को रिश्तेदार कहने लायक नहीं है। माता पिता बनने लायक नहीं है, देवता बनने लायक नहीं है, जब तक कि उसमें वो सामर्थ्य नहीं है कि अपने ऊपर जो निर्भर लोग हैं उनको वो जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा न दिलाए। न समुपेत मृत्युम, न मोचयेत, मोचयेत मतलब मुक्त करना मृत्यु से, मृत्यु के पाश से मुक्त करना, जब तक वो ये नहीं करता वो जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है अपनी। तो कुंती महारानी जानती हैं कि उनके परिवार के सदस्य भी श्री कृष्ण से कितना प्रेम करते हैं, लेकिन फिर भी वो सिखाती हैं कि चाहे हम गृहस्थ भक्त भक्त भी क्यों न हो, फिर भी हमें समझना चाहिए कि ये पारिवारिक आसक्ति हमारे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि अंत में उनका स्मरण करते हुए हम प्राण को त्यागेंगे तो फिर हम भगवान के धाम में नहीं लौट के जाएंगे। हमें निरासक्त भाव में परिवार के सदस्यों का बड़े अच्छे ढंग से देखभाल करना चाहिए, उनको कृष्ण भक्ति में लगाना चाहिए, और साथ साथ उनके प्रति पूरी तरह से आसक्त नहीं कैसे हों यह भी हमको सीखना चाहिए। और इसी चीज को सिखलाने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए थे, वैराग्य विद्या निज भक्ति योग शिक्षार्थम एक पुरुष पुराण है। श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी कृपाम बुधिर यस्तम अहम प्रपद्ये। सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु का गुणगान करते हैं, कहते हैं कि आप इन चीजों को सिखलाने के लिए आए। वैराग्य विद्या, वैराग्य विद्या और निज भक्ति योग, क्योंकि भक्ति के साथ साथ विद्या भी चाहिए, ज्ञान भी चाहिए और वैराग्य भी चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम कृष्ण भक्ति कर रहे हैं तो बस, कि जितने भी आसक्ति हो वो चलेगा। नहीं, आसक्ति को भी कम करने का प्रयास करना चाहिए। जहां हमारी आसक्ति होगी किसी भौतिक चीज में, वो हमारे दुख का कारण बनना ही बनना है, क्योंकि वो चीज हमसे आज नहीं तो कल छीन ली जाएगी। तो क्यों ना अभी से तैयारी करें। अभी से तैयारी करेंगे कैसे, वही उसी आसक्ति को कृष्ण में केंद्रित करके। आसक्ति रहित जीव नहीं रह सकता, जीव को अपने चित्त को कहीं न कहीं समर्पित करना ही है। तो केवल अपने परिवार, अपने समाज, अपने इसमें उसमें रहने के बजाय, वही जो प्रेम करने की प्रवृत्ति है, सेवा करने की प्रवृत्ति है, वो भगवान कृष्ण में केंद्रित क्यों न की जाए। उससे हमारा परिवार भी संतुष्ट होगा, उनका जीवन भी खिल उठेगा, हम अपने कर्तव्य को पूरी तरह से निभा पाएंगे और हमारा जीवन भी सार्थक हो जाएगा, सफल हो जाएगा। तो कुंती महारानी हमको सिखला रही है, हालांकि वो महिला है, फिर उनकी शिक्षाएं बड़े बड़े ऋषि मुनि भी ऐसी हैं जो ऋषि मुनियों के लिए भी अनुसरणीय हैं, सुनने योग्य हैं। कुंती महारानी कभी स्कूल कॉलेज में नहीं गई, कभी बीए एमए पीएचडी उन्होंने नहीं किया, गुरुकुल में नहीं गई, लेकिन सबसे ऊंची शिक्षा वो हमको दे रही है। तो माताओं को भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें कोई भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने के लिए हमें चांस नहीं है, हमें उतनी सुविधा नहीं मिलती। नहीं, कुंती महारानी के उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि हम सब कुंती महारानी के पद चिन्हों में चलने की आशा रखते हैं, तो भक्ति मार्ग में कोई भेदभाव नहीं है। इस प्रकार के लिए सभी को आगे बढ़ने के लिए एक बहुत अच्छा अवसर है। तो भगवान के सामने हमें आके यही प्रार्थना करनी चाहिए, जैसे कुंती महारानी करती है। आप विश्वेश हैं, विश्व के ईश, ईश मतलब ईश्वर, नियंता, नियंत्रण करने वाले, आपकी अध्यक्षता में ही सब कुछ चल रहा है। और ये अध्यक्ष शब्द होता है ना, जब कहते मयाध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत परिवर्तते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मेरी अध्यक्षता में सब कुछ चल रहा है, सारी सृष्टि चल रही है। तो ये अध्यक्ष, मय अध्यक्षेण, तो ये अक्ष, प्रभुपाद कहते हैं अक्ष मतलब आंखें, केवल भगवान की दृष्टि से सब कुछ चल रहा है। भगवान को परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है कि कहां कुछ नहीं चल रहा है, चलो भर मीटिंग करो, ये करो, क्या करो। मंदिर में जो अध्यक्ष होता है बेचारे, वो क्या क्या मीटिंग ये वो सब करना पड़ता है, कहां क्या समस्या है ये करो वो करो। वो कहेगा केवल दृष्टि से सब कुछ ठीक करूंगा, नहीं होगा, बेचारे कितना ही देखता रहेगा नहीं होगा, है ना। लेकिन भगवान ऐसे नहीं है, क्या समस्या है, सृष्टि की उत्पत्ति करनी है, चलो एक देख लिया बस हो गया सब कुछ। दृष्टि मात्र से अध्यक्षेण, तो अध्यक्ष शब्द का यह भी अर्थ है जो अपनी दृष्टि सब जगह रखता है कि क्या चल रहा है, कहां क्या हो रहा है, सब ठीक हो रहा है ना नहीं हो रहा है। तो मय अध्यक्षेण का मतलब है भगवान अपने केवल दृष्टि मात्र से सब कुछ मेंटेन करते हैं, सब हर चीज का पालन पोषण करते हैं, सृजन भी करते हैं, संहार भी करते हैं, केवल दृष्टि मात्र से। इसलिए वो विश्वेश है, विश्व के ईश्वर, साथ साथ में विश्वात्मन, वो विश्व के आत्मा है। जैसे हमारे शरीर में आत्मा है और आत्मा के बिना शरीर कुछ नहीं कर सकता, उसी प्रकार से ये ब्रह्मांड जो है ये भगवान का एक शरीर है, विश्वरूप, इसलिए विश्वरूप भी कहते हैं, विश्वमूर्ते, विश्वमूर्ति मतलब विश्वरूप, और साथ साथ में विश्वात्मन, क्योंकि इस शरीर के अंदर ये आत्मा है, भगवान गर्भोदकशायी विष्णु के रूप में विराजमान है, इसलिए ब्रह्मांड में सब कुछ होता है। सृष्टि के जो सृजन के समय जो क्रमशः जो पदार्थों की उत्पत्ति होती है वो हर स्तर पर भगवान की दृष्टि की आवश्यकता पड़ती है। ब्रह्मा जी यहां विसर्ग की उत्पत्ति करते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी भी भगवान की सहायता के बिना, भगवान की कृपा के बिना इस कार्य को संपन्न नहीं कर पाएंगे। तो हर अवस्था में भगवान की आवश्यकता है, उनकी दृष्टि की आवश्यकता है, इसलिए वो इस ब्रह्मांड के आत्मा हैं। अगर वो नहीं रहेंगे ब्रह्मांड के भीतर तो ब्रह्मांड में कुछ नहीं हो पाएगा। जिस तरह से आत्मा शरीर के अंदर नहीं रहने से शरीर कुछ भी नहीं कर पाएगा, इसलिए कुंती महारानी भगवान कृष्ण को विश्वेश, विश्वात्मन और विश्वमूर्ति इन तीनों शब्दों से संबोधित करती हैं और कहते हैं आप इतने शक्तिशाली हैं, आप सारे ब्रह्मांड का नियंत्रण कर सकते हैं, आप विश्व रूप हैं, तो मेरे हृदय का नियंत्रण अवश्य आप कर सकते हैं। तो मेरे हृदय में जो गांठ है, हृदय ग्रंथि, मेरे परिवार के प्रति जो आसक्ति है, जो पाश है, रस्सी है, उसको आप काट दीजिए। स्वकेशु में मेरे स्वजनों के प्रति स्नेह पाशम इमं छिंधी दृढ़म पांडुषु वृष्णिषु। और पहला शब्द क्या है, वो कहती हैं अथ, मतलब अतः। पहले वो कह चुकी हैं कि सब कुछ भगवान कृष्ण के कृपा दृष्टि के ऊपर आधारित है, इसलिए है कृष्ण अब वही कृपा दृष्टि मेरे ऊपर रखिए और आपकी सबसे बड़ी कृपा ये होगी कि मेरे बेटे को बहुत अच्छा सब कुछ बिजनेस मिल जाए, मेरी बेटी को अच्छा वर मिल जाए। नहीं, आपकी सबसे अच्छी कृपा मेरे ऊपर ये होगी कि परिवार से मेरी आसक्ति को काट दीजिए। और ये एक महिला प्रार्थना कर रही है, पुरुष नहीं कर रही है प्रार्थना। तो इन सब प्रार्थनाओं से हमें सीखना चाहिए। आज वैसे हमें याद नहीं रहा कि आज अद्वैत आचार्य का आविर्भाव दिवस है, तो थोड़ा बहुत एक 5 मिनट में अद्वैत आचार्य के ऊपर बोलना उचित रहेगा। इस समय अद्वैत आचार्य भी भगवान के अवतार हैं और ये भी उनकी योजना है कि इस समय जो दृष्टि से सृष्टि उत्पत्ति करने की बात हो रही है वही तो अद्वैत आचार्य का काम है। वो महाविष्णु के अवतार हैं। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी समझाते हैं कि भगवान की जो भौतिक शक्ति है उसके दो अंग होते हैं, एक है निमित्त और दूसरा है उपादान। उपादान मतलब जो भौतिक कारण है और निमित्त मतलब जो निमित्त, आप समझे निमित्त। तो निमित्त को कहते हैं माया और ये जो उपादान इसको कहते हैं प्रधान। ये प्रधान शब्द से आप परिचित हैं, मतलब सारे तत्व जब अव्यक्त रूप में रहते हैं सृष्टि के सृजन के पहले तो उसको प्रधान कहते हैं। तो वही महाविष्णु अपने आप को विस्तार करते हैं, विस्तारित करते हैं और विष्णु के रूप में वो निमित्त कार्य को संभालते हैं और अद्वैत आचार्य के रूप में वो उपादान केंद्र माया को माया के साथ संबंध रख के सृष्टि की या 84 लाख योनियों की उत्पत्ति कराते हैं। तो अद्वैत आचार्य जो कि चैतन्य महाप्रभु के पार्षद थे, चैतन्य महाप्रभु से काफी वरिष्ठ थे, उनके पहले उन्होंने वो यहां प्रकट हुए थे, ये भी विष्णु तत्व हैं। पंच तत्व में हैं चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, श्रीवास ठाकुर और गदाधर पंडित। तो इन पांचों में से पहले तीन जो हैं ये विष्णु तत्व माने जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं श्री कृष्ण हैं, नित्यानंद प्रभु स्वयं बलराम जी हैं और अद्वैत आचार्य ये स्वयं महाविष्णु के अवतार माने जाते हैं। परंतु इस समय वो चैतन्य महाप्रभु की लीला में शामिल हुए हैं तो अपने आप को महाविष्णु नहीं मान रहे हैं, अपने आप को केवल चैतन्य महाप्रभु का दास मान रहे हैं, अपने आप को एक कृष्ण भक्त मान रहे हैं। हालांकि चैतन्य महाप्रभु उनको गुरुतुल्य समझते थे क्योंकि अद्वैत आचार्य ने दीक्षा ली थी माधवेंद्र पुरी से, जबकि चैतन्य महाप्रभु के गुरु ईश्वर पुरी ने भी माधवेंद्र पुरी से दीक्षा ली थी, इसलिए चैतन्य महाप्रभु के लिए अद्वैताचार्य गुरुतुल्य थे। परंतु अद्वैत आचार्य कभी इस बात को स्वीकार नहीं करते थे। वो चैतन्य महाप्रभु को अपना प्रभु या अपना स्वामी मानते थे। तो ये दोनों के बीच में इस प्रकार के प्रेम की स्पर्धा चलती थी। अद्वैत आचार्य के कारण ही भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में यहां पर प्रकट हुए। वो जब निवास करते थे शांतिपुर और नवद्वीप में, तो उन्होंने भगवान से बहुत प्रार्थना की, तुलसी और गंगा जल अर्पण करके। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि उन्होंने ये श्लोक और अन्य श्लोक भी बार बार उच्चारण करके भगवान का आह्वान किया कि कृपया आप यहां पर प्रकट हो जाइए। तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेण वा विक्रीणिते स्वमात्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः। तुलसी दल मात्रेण कि तुलसी का पत्ता और जलस्य, कौन सा जल, गंगा जल, चुलुकेण वा, बस थोड़ा सा इतना रखेंगे चुलुक, तो इतने से हे प्रभु आप अपने आप को बेच डालते हो। विक्रीणते स्वम आत्मानम, केवल जब आपका भक्त जो है आपको तुलसी पत्ता और गंगा जल अर्पण करता है तो आप अपने आप को बेच डालते हो, भक्त के हवाले कर डालते हो। भक्तेभ्यः, भक्तों के प्रति आप ऐसा करते हैं। क्यों? क्योंकि आप भक्त वत्सल हैं, भक्तों से आप बहुत प्रेम करते हैं। तो ये श्लोक का उच्चारण करते करते अद्वैत आचार्य ने भगवान से प्रार्थना की कि अब समय बहुत बुरा है, बहुत बुरी हालत है यहां पर, सभी लोग नास्तिक हैं, सभी लोग भोगवादी हैं और धर्म का बिल्कुल उन्होंने को उल्टा कर दिया है, धर्म को अधर्म कर दिया, अधर्म को धर्म मान रहे हैं। तो इसके लिए एक ही उपाय है, आप ही को आना होगा यहां, अन्यथा कोई और मार्ग नहीं है। तो उनकी भक्ति से भरी तीव्र प्रार्थना को, पुकार को सुनकर स्वयं श्री कृष्ण जो भक्तवत्सल है वो प्रकट हुए चैतन्य महाप्रभु के रूप में। और फिर अद्वैत आचार्य चैतन्य महाप्रभु के संग रहे। कई वर्षों से वो बड़े थे चैतन्य महाप्रभु से, और दोनों साथ में, और पंचतत्व और अन्य साथी भी चैतन्य महाप्रभु के नगर संकीर्तन में भाग लेते। अद्वैत आचार्य गृहस्थ भक्त थे और उन्होंने भी सिखलाया कि आदर्श गृहस्थ भक्त भक्ति में कैसा होना चाहिए, जीवन उसकी कैसी होनी चाहिए। अद्वैत आचार्य चैतन्य महाप्रभु की कई सुंदर लीलाएं हुई थी, लेकिन एक छोटी सी लीला ही हम सुनाएंगे कि चैतन्य महाप्रभु के एक बड़े भाई थे जिनका नाम था विश्वरूप। जब चैतन्य महाप्रभु बड़े छोटे थे, बच्चे थे, उस समय विश्वरूप ने संन्यास लिया। अद्वैत आचार्य श्रीमद भागवत के ऊपर कथा करते थे। नवयुवक विश्वरूप वहां पे जाया करते थे और उनको ये भागवत की कथा वगैरह सुनने में बहुत रुचि थी। और धीरे 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 उनके अंदर वैराग्य की भावना बढ़ गई और एक दिन किसी को बोले बिना चुपके से वो घर से निकल पड़े, उन्होंने संन्यास लिया। मन ही मन में सची माता जो है वो अद्वैत आचार्य को दोषी ठहराती थी कि उनकी वजह से उनका पुत्र खो गया, ये अद्वैत आचार्य की वजह से मेरा पुत्र ये सब सीख गया और उसको प्रेरणा मिली कि संन्यास ले लें। तो चैतन्य महाप्रभु ने सोचा कि मेरे माँ ने अच्छा नहीं किया कि ऐसा सोचा, अद्वैत आचार्य जैसे भक्त के बारे में उन्होंने ऐसा सोचा, ये ठीक नहीं है, ये बहुत बड़ा वैष्णव अपराध है, तो कैसे उसको ठीक किया जाए। तो उन्होंने माँ को कहा कि माँ आपने ऐसे ऐसे अपराध किया, ठीक नहीं, अच्छा तो फिर क्या किया जाए। तो अद्वैत आचार्य की चरण धूली चाहिए। अब अद्वैत आचार्य कहां देते उनकी चरण धूली, और वो भी चैतन्य महाप्रभु की माँ को। तो फिर एक बार जब अद्वैत आचार्य दंडवत प्रणाम कर रहे थे तो उस समय चैतन्य महाप्रभु ने मौका देखा और माँ को कहा जल्दी जाओ, अभी ले लो चरण धूली। तो चरण धूली ले ली और अपने सर पे डाल दिया और क्षमा याचना की, तब वो इससे मुक्त हो गई। और अद्वैत आचार्य को तो बहुत शर्म आई कि अरे ये क्या कर दिया आपने। तो इस प्रकार से सची माता को भी उन्होंने इस अपराध से मुक्त कर दिया, सची माता भी तो भगवान की माँ है, वो क्या भला अपराध कर सकती है। ये एक लीला है कि ले हम सबको सिखलाने के लिए कि कैसे हमें भी वैष्णव अपराध से बच के रहना चाहिए। तो आज अद्वैत आचार्य का आविर्भाव दिवस है और इसलिए आज हम 12 बजे तक उपवास करेंगे। इसलिए आज कथा थोड़ी आगे हमने करा दिया, क्योंकि वैसे प्रसाद का तो अभी तो लेना नहीं है प्रसाद 12 बजे तक। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी रथ यात्रा के लिए तैयारी सब भक्त लोग कर रहे हैं। आप में से जो बेलगाम से बाहर से आए हैं, अतिथि हैं भक्त, आप सबका स्वागत है। आशा करते हैं आपको यहाँ पर बहुत अच्छा अनुभव होगा, आपको बड़ा दिव्य आनंद का अनुभव होगा। और आपके कोई अभी प्रश्न है, टीका है तो आप कह सकते हैं। मोता जी का प्रश्न है कि ऐसे यहाँ, वैसे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि आजकल के कृत्रिम जो बड़े बड़े उद्योग हैं, उनसे समस्या का समाधान नहीं होगा। तो प्रश्न ये है कि फिर कैसे होगा, इनके बिना कैसे होगा, फिर बेरोजगारी हो जाएगी, फिर देश के बाहर कैसे हम किसी चीजों को बेच सकते हैं, ये सब चीजें हैं। देखिए, इसके पीछे कई बातें हैं। जनसंख्या ये समस्या नहीं है वास्तव में, ये एक मिथ्या है, एक प्रोपेगेंडा है। ये ओवर पॉपुलेशन, पृथ्वी पूरी तरह से समर्थ है। समर्थ मतलब समझे ना आप, समर्थ, फुल्ली केपेबल। पृथ्वी को कोई कष्ट नहीं है, कितने भी मनुष्य हों उनका, उनको संभालने के लिए, उनके भरण पोषण के लिए पृथ्वी पूरी तरह से समर्थ है। इस समय भी जितना अनाज का उत्पादन हो रहा है वो सारे पृथ्वी को खिलाने के लिए अभी काफी है, पर्याप्त है। परंतु हमने अलग अलग विभाजन किए हैं। अमेरिका कहता है लाखों लाखों टन अनाज के समुद्र में डाल देते हैं। क्यों? ताकि अनाज की कीमत जो है वो कम ना हो जाए। वही अनाज अफ्रीका में, एशिया में, इधर उधर जहां गरीब लोग हैं उनको बांटा जाए तो क्या समस्या थी? नहीं। तो हमने अर्थव्यवस्था को भी कृत्रिम बना दिया है, पहली बात। दूसरी बात, पृथ्वी माता कब प्रचुर मात्रा में ये सब प्रदान करेंगी? कब करेंगी? तब वीक्षितये हि, जब भगवान की कृपा दृष्टि उनके ऊपर होगी, जब भगवान उपस्थित रहेंगे, जब मनुष्य समाज भगवान श्री कृष्ण को केंद्र बिंदु बनाएंगे, जब मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की सेवा और भक्ति करने के बजाय, धर्म के आदेशों के अनुसार चलने के बजाय पाप करेंगे, केवल भोगवाद का आश्रय लेंगे, पृथ्वी का शोषण करेंगे, जैसे यहां तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं, केवल अपने लोभ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, तो फिर पृथ्वी माता क्या कहेंगे? वो क्यों देंगी? नहीं देंगी, वो सब बंद करके रखेंगे। जिसे कोई अगर हमारे ऊपर आक्रमण करेगा, हमारे घर में आएगा चोरी करने के लिए, तो भले वो जबरदस्ती से एक कुछ टीवी उठा के ले गया, ये उठा के ले गया, लेकिन बाकी चीजें हम तो बचा के रखने के लिए कोशिश करेंगे ना, कम से कम ये भी नहीं ले जाए, वो नहीं ले जाए। तो हम तो जोर जबरदस्ती से कोई डायनामाइट लगा दिया, कोई उग्र कर्म, प्रभवंति उग्र कर्माण है, क्षयाय जगतो अहिताः, जगत के अहित के लिए हम ऐसे सब कार्य करते हैं। बड़े बड़े वंश ला के खोदो जमीन में, डायनामाइट लगा दो, सबको फोड़ फाड़, तोड़ फोड़ कर दो सब जगह, पेड़ों को काट दो, इसको कर, पूरा सत्यानाश सारे पृथ्वी का मनुष्य ने किया है। तो पृथ्वी माता कैसे संतुष्ट हो सकती है? वो क्यों भला देंगी पर्याप्त मात्रा में सब चीजें जो मनुष्य के लिए चाहिए? आखिर पृथ्वी माता भी तो कृष्ण भक्त हैं, और अगर पृथ्वी माता संतुष्ट रहेंगी तो कोई समस्या नहीं है। अब पृथ्वी माता असंतुष्ट हैं, क्योंकि मनुष्य समाज जो है पापी है, कोई यज्ञ नहीं हो रहे हैं। उस दिन वो पत्रकार आए थे कि आपने देखा कैसे प्रश्न कर रहे हैं, उनको विश्वास नहीं है कि हरि नाम करने से सारे समस्याओं का समाधान हो जाएगा। वो कहते हैं बेरोजगारी है, आप ये पैसा आप कोई नौकरी देने के लिए किसी को कर दीजिए। वो नहीं समझते हैं कि मूल कारण क्या है। मूल कारण है कि हम भगवान को भूल चुके हैं, इसलिए बारंबार जन्म लेना पड़ता है, बेरोजगारी क्या, तरह तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। केवल शुद्ध भक्ति, कृष्ण भक्ति करेंगे तो किसी को बेरोजगारी नहीं होगी। पुराने जमाने में जनसंख्या भी बहुत अधिक थी, वैदिक काल में। ऐसा नहीं कि आज के जमाने में जनसंख्या इतनी हो गई है। द्वारका में भी कितने लाखों लोग रहते थे, भगवान कृष्ण की का कुटुंब ही कितना बड़ा था, एक कुटुंब भगवान श्री कृष्ण का। उनके 16,108 रानियां थीं, हर एक रानी से 10 पुत्र, तो कितने हुए 1,61,000 पुत्र, और हर एक 1,61,000 पुत्र के 10 पुत्र। तो देखिए, तो ये केवल श्री कृष्ण का कुटुंब, और उनके साथ में और कितने थे रिश्तेदार, उनके पुत्र, उनके उनके परिवार, और एक शहर में द्वारका में। ऐसे हम सुनते नहीं कि वहां कोई ट्रैफिक जैम होता था, कोई एक्सीडेंट होता था, कोई कमी थी, कोई क्या थी, वहां कोई रायट होता था, कोई दंगा होता था कि ये कमी है, ये महंगा हो रहा है। सब कुछ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था। यज्ञ आजकल नहीं हो रहा है, अन्नाद भवंति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभव है, यज्ञात भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव है। मूल यज्ञ है, यज्ञ नहीं हो रहा है तो वर्षा नहीं, वर्षा नहीं तो फिर अन्न नहीं। पृथ्वी माता अपने अंदर सब समेट लेके जा रही, खींच रही है सारी चीजें, कोई मोतियां नहीं दे रही है, धातुएं नहीं दे रही है, पानी नहीं छोड़ रही है, इसलिए और नीचे 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 जाना पड़ता है हर चीज को लेने के लिए। वसुंधरा हमने देखा है, तरह तरह के समस्त प्रकारों से धन से युक्त है पृथ्वी माता, इसलिए वसुधा नाम है, लेकिन नहीं दे रही है वो, क्योंकि हम इस योग्य नहीं है। अगर मनुष्य योग्य बने, वो यज्ञ करे, भगवान की भक्ति करे, तो कोई समस्या नहीं। तो फिर केवल प्रकृति के वरदान जो है, गिफ्ट्स ऑफ नेचर से मनुष्य समाज खिल सकता है, सब कुछ हरा भरा हो सकता है। क्योंकि हम ये सब नहीं कर रहे हैं तो कुछ तो करना चाहिए ना, तो फिर ये सब आ गए कृत्रिम अवस्था। प्रभुपाद कहते थे कि ठीक है, वी हैव टू मेक बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गेन, अब जो है सो है, ठीक है, लेकिन कम से कम समझ लेना चाहिए। और अब जो एक आंदोलन चल रहा है लोगों को कि लोगों को खेती से बाहर निकालो, अरे तुम खेती करते हो, अरे चलो चलो इधर चलो, बेचारा कर रहा है अच्छी भला खा, उसको जाके वहां से डिस्टर्ब करके ले आते हैं शहरों में, ताकि वो भी बेरोजगारों के नंबरों को बढ़ाए। एक सभा हुई थी, एक किसान कह रहे थे, उन्होंने बढ़िया बैल जो है, जो खिल्लड़ बैल जो है, जो खेती के लिए भी बहुत अच्छा है, वो एक कोई प्रदर्शनी थी कोई खेती वगैरह के बारे में दिल्ली में, तो दिल्ली से यहां से ले गए थे उनको, तो वहां ले गए तो जो कृषि मंत्री था वो भी महाराष्ट्र का था, ये किसान भी महाराष्ट्र का था, तो देखा कि ये मराठी बोलने वाला आदमी है, तो जाके बोले, अरे बैल तुम्हारे पास ट्रैक्टर वैक्टर नहीं है क्या? तो बेचारा किसान क्या बोले, नहीं भाई हम गरीब है, देखो ट्रैक्टर हमको प्रेम नहीं कर सकता, उसने जवाब दिया। देखो कितनी ऊंची बात कही उसने, भला मंत्री इतना बड़ा आदमी हो दुनिया की दृष्टि से, लेकिन ऐसी सरल बात जो है एक किसान भी बोल लेता है कि ट्रैक्टर मेरे से प्रेम नहीं कर सकता, ये बैल मेरे से प्रेम करता है, ये मेरे पिता के जैसे है, मेरी सेवा करता है, सब अनाज उत्पाद करता है। अब आजकल हम लोग बहुत एडवांस्ड हो गए हैं, तो आजकल हमें कोई प्रेम नहीं चाहिए, केवल पैसा चाहिए, लेकिन प्रेम के बिना कौन रह सकता है, इसलिए अशांति सब जगह। तो अभी जो अवस्था में है सो है, क्या करें, लेकिन कम से कम धीरे धीरे से हम यज्ञ करते रहें तो फिर प्रकृति में सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। इसीलिए तो जैसे हमने पहले कहा, गोकुलधाम जैसे प्रोजेक्ट्स हम इसीलिए करना चाहते हैं, लोगों को बताने के लिए कि मनुष्य समाज में सुख शांति के लिए, समृद्धि के लिए ये काफी है, कृष्ण की कृपा और प्रकृति के भेंट, प्रकृति के वरदान, बस। ठीक है। प्रश्न ये है कि भागवत में कहा गया है कि जब तक कोई व्यक्ति अपने बच्चों को मुक्त नहीं कर सकता जन्म मृत्यु से, तब तक उसे जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए, तो क्या इसमें अहमता और ममत्वा नहीं आती? हाँ, थोड़ी बहुत आ सकती है, लेकिन हमें समझना चाहिए कि आखिर ये कृष्ण के हैं, हमें जिम्मेदारी दी गई है इनको, इनका पालन पोषण करने के लिए, ताकि वो अच्छी तरह से कृष्ण भक्ति कर सके। पालन पोषण इसलिए नहीं कि वो अच्छी नौकरी करे, अच्छा बिजनेस करे, खूब कमाए, अच्छा असुर बने, नहीं। हमें चाहिए कि उसे बड़ा करें ताकि वो एक अच्छा भक्त बन जाए। ये कृष्ण की संपत्ति है, कृष्ण ने मेरे हवाले कर दिया है इस बच्चे को, तो मुझे इसको बड़ा करना, उसका भरण पोषण करना, ये मेरा कर्तव्य है। कृष्ण की सेवा है ये मेरे लिए, कृष्ण ये बच्चा मुझे सौंप दिया है, कृष्ण का बच्चा है, इसलिए मैं इसका देखभाल कर रहा हूं, मेरा बच्चा नहीं है। पिछले जीवन में भी मेरे बच्चे थे, उसके पहले जीवन में भी बच्चे, कहां गए वो सब बच्चे? और अगले जीवन में भी ये बच्चे चले जाएंगे, सब बच्चे कृष्ण के हैं, सारे प्राणी कृष्ण के हैं, हम केवल ट्रस्टी हैं। जैसे अभी हमारी संस्था है, इस संस्था में कोई भक्त हैं जो सेवा करते हैं, ये सब कृष्ण का मंदिर है, कृष्ण की संपत्ति है, कृष्ण का धन है, कृष्ण का सब कुछ है, लेकिन फिर भी भक्त हैं, थोड़ी जिम्मेदारी लेते हैं, कोई ये पद संभालता है, कोई वो पद संभालता है, कृष्ण की कृष्ण का प्रतिनिधित्व करते हुए करता है, न कि अपना समझ के करता है। तो इसी भावना से अगर गृहस्थ आश्रम में भी भक्त अपने जीवन को बिताए तो उसका जीवन सार्थक हो सकता है, सफल हो सकता है। तो ममत्व अपना जो भी ये मैं है, अहंकार, मिथ्या अहंकार नहीं आएगा। ये है कि आजकल बूढ़े लोग तो आते हैं, लेकिन नौजवान लोगों को कैसे आकर्षित करना है? समस्या ये है कि बूढ़े भी आजकल नहीं आते हैं, आजकल टीवी के सामने बैठते हैं सब लोग, उनको भी बोले तो नहीं आते हैं। लेकिन आप यहां मंदिर में देखेंगे, आप देखिए, घूम के देखिए, नौजवान कितने बैठे हैं यहां मंदिर में। तो क्या कारण है? ये प्रभुपाद का जीनियस है, प्रभुपाद का ये चमत्कार है कि उन्होंने यंग लोगों को आकर्षित किया। अन्य मंदिरों में देखिए, केवल थोड़े वृद्ध बेचारे बैठेंगे वहां, कुछ करेंगे ऐसे ही, और वो भी कुछ कथा भी चलेगा तो सुनेंगे नहीं, आपस में उनकी बातचीत चलेगी, एक केवल शाम का समय कटे कुछ तरह से, वो मंदिर है, एक अच्छा सामाजिक स्थान है, जाके बैठते हैं। थोड़े बहुत है जिनकी भक्ति भावना है, वो बेचारे जाके अच्छी तरह से करने का प्रयास करते हैं। बूढ़े हो, बच्चे हो, आजकल कलयुग के प्रभाव में, आधुनिक जमाने में सब बहते जा रहे हैं, बहते जा रहे हैं। आजकल अंतर नहीं रहा ज्यादा बूढ़े और बच्चे में, उसी प्रकार का भोग आजकल बूढ़े लोग भी करना चाहते हैं जो जवान लोग कर रहे हैं। एक भक्त बॉम्बे में बता रहे थे कि एक लड़का है, कॉलेज का लड़का, वो अभी अभी भक्त बना, तो वो पहले डिस्को डांस करने जाता था। वो कहते वहां बूढ़े लोग भी आते हैं, तो आजकल ऐसा नहीं कि केवल जवान लोग वो करने जाएं, बूढ़े लोग भी आते हैं। अरे उनको तो मंदिर में जाना चाहिए, वो भी नहीं। तो आजकल सब समान हो गया है, सभी लोग सब कुछ कर रहे हैं भक्ति के सिवाय। लेकिन प्रभुपाद जी ने इस प्रकार से प्रचार किया कि उन्होंने यंग लोगों को ही आकर्षित किया, इसीलिए ये मूवमेंट फैला है, इसीलिए ये आंदोलन जो है, ये संस्था फैली है सब जगह, इसलिए आशा है इस संस्था के ऊपर, क्योंकि ये कुछ कर देगा ये संस्था। और इसमें वृद्ध भी हैं, जवान भी हैं, सभी हैं, बच्चे भी हैं, बूढ़े हैं, सब। यहां कोई जाति भेद नहीं, भाषा भेद नहीं, कोई भेद नहीं, यहां पर सब एक हैं, कृष्ण के बच्चे हैं, चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन भाग लेने आए हैं। क्या एक किसी का प्रश्न था, किसी ने आप ऊपर? प्रश्न ये है कि वृंदावन के अनुभव से कि मन भी बंदर की तरह है, हम अगर उसको बंद करना चाहें, दरवाजा बंद करके अंदर रहे तो अंदर बहुत उत्पात करता है और बाहर से इंद्रियां भी उत्पात करती हैं। हाँ सही है, इसलिए बंदर को केवल चुप नहीं रख सकते ऐसे, उसको क्या करने को देना चाहिए, वो उसमें मग्न हो जाएगा, वो व्यस्त हो जाएगा उसमें। उसी प्रकार से मन भी बंदर की तरह है, बच्चे की तरह है, उसको बिजी रखना चाहिए, व्यस्त रखना चाहिए, खाली नहीं छोड़ना चाहिए। मन खाली हो गया तो आप जानते हैं आलसी मन शैतान का कारखाना बन जाता है, और ऐसे कारखाने में उत्पादन दिन ब दिन बढ़ता है। तो इसलिए मन को भगवान कृष्ण की सेवा में हर समय लगाना चाहिए, ऐसा करने से मन सताएगा नहीं। हाँ रूपा जी ने वहां कहा था कि ये जो फल भी इधर करते हैं ज्यादा केवल ट्रांसपोर्टेशन केवल बढ़ाते हैं, ऐसा नहीं कि उत्पादन बढ़ा रहे हैं, केवल ट्रांसपोर्टेशन बढ़ाते हैं। हाँ वास्तव में सारे देशों के बीच में अगर सहयोग हुआ तो कहीं भी किसी भी चीज का अभाव नहीं होगा, आज के परिस्थिति में भी, आज के समय फिर भी किसी को कोई कमी नहीं होगी। लेकिन जब हम मैं और मेरा कहने लगेंगे, ये केवल मेरा है, मेरे समाज का है, मेरे इसका है, तो फिर कृत्रिम रूप से कहीं अभाव कहीं ज्यादा कुछ हो जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा आज यहाँ पर चंद्रमौली महाराज आ रहे हैं, जो पिछले साल भी हर साल रथ यात्रा में आते हैं, आप तो उनसे अच्छी तरह से परिचित हैं, तो आज आ रहे हैं, तो आज शाम को और कल सुबह उनके द्वारा क्लास होगा, तो कृपया आप सब आकर इन दोनों प्रवचनों का आप पूरा पूरा लाभ उठाइए। ठीक है, हालांकि आप में से कई बहुत सेवा में व्यस्त होंगे, लेकिन जिनको समय मिलेगा आप अवश्य आकर यहाँ सत्संग में भाग लीजिए। ठीक है।